चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्न गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय
को संभालो तो कोई आप लोग एक मिनट के लिए बात तो बंद कीजिए, किसी से बात मत कीजिए। ये दस मिनट का समय हमको आप लोग दीजिए, ये बोलता नहीं है, ये चल नहीं रहा। प्रथम मैं अपने परमाराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में मैं अपनी प्रणति पुष्पांजलि ज्ञापन। तत्पश्चात वैष्णवगण उपस्थित माताएं और बेटियां अपना यथायुक्त अभिवादन आप लोगों को जनाता हूं। अभी सबसे निवेदन है 10 मिनट का समय हमें दीजिए, परस्पर बात मत करें। तो 10 मिनट का समय हमें देंगे, इसके बाद में जितनी इच्छा हो आप लोग बातचीत करेंगे, यह समय हमको दें। खूब ध्यान से सुनेंगे। माया भी हो सकती है कि आपके आंखों पर हजार मन का बोझा लेकर के बैठ जाए, नींद भी आ सकती है। हरि कथा में सबसे बड़ी यही बात है, माया बड़ी डर जाती है और प्रतीक्षा करती है कि कोई भी भगवान की कथा न सुने। भाई जरा संभाल, कोई भी भगवान की कथा न सुने तो हमारे राज्य से निकल करके चला जाए, ये भी माया है। तो माया सुजोग देखती है और जब ही कोई सुजोग पाती है हरि कथा से बहुत दूर कर देती है। इसलिए खूब तन करके बैठें, खूब मनोनिवेश से सुने। आप लोगों से हमारा कोई स्वार्थ नहीं, पैसा मांगने के लिए भिक्षा मांगने के लिए आप लोगों के पास नहीं आया। मैं कुछ अपनी संपत्ति साधन जिसकी जगत में कोई तुलना नहीं, उसको अपने साधन का फल आप लोगों को देने के लिए आया। इसलिए सच्ची खरी खोटी कड़वी बातें भी कह सकता हूं, क्योंकि लाग लपेट तो है नहीं, स्वार्थ तो है नहीं कि आप लोग मुझे पैसा नहीं देंगे या नहीं देंगे, इसलिए मैं खरी खोटी साफ राफ बात करूंगा, बहुत कम 15-20 मिनट में बोलूंगा, इसके बाद में और ब्रह्मचारी लोग भी बोलेंगे। कल हमारे ब्रह्मचारियों ने और रामचंद्र जी ने भक्ति की परिभाषा दी। भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने बतलाया कि कायिक मानसिक वाचिक और भावात्मक जितनी भी चेष्टाएं हों वो कृष्ण के लिए रुचिकर और प्रीतिकर, कृष्ण प्रसन्न हो इसलिए हो, और कृष्ण भक्ति के बदले किसी प्रकार की लौकिक पारमार्थिक कोई भी कामना वासना न हो, केवल एकांतिक रूप में भक्ति ही हो, ज्ञान कर्म योग तपस्या इनका कोई भी सहायता न रहे, ये उससे ढकी हुई न रहे, ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय किसी के अधीन न रह करके उन्मुक्त रूप से भगवान की तन मन वचन से और भावों से कृष्ण के लिए प्रीतिकर रुचिकर सेवा का नाम भक्ति। ये तो डिफिनेशन हमने कहा, और सारे हमारे भक्ति शास्त्रों में इसका विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मैं इस बहुत सरल सहज बोधगम्य रूप में एक उपमा देते हुए आप लोगों को समझाने की चेष्टा, खूब सरल सहज। कैकई ने महाराज दशरथ से दो वर मांगे, पहले वर में राम 14 वर्ष के लिए बन जाए और दूसरे वन में भरत जी राजा हों, उनका राज्याभिषेक किया। महाराज दशरथ के लिए ये प्रतिकार नहीं रहा, बड़े दुखी हो गए, प्राण छोड़ने लगे, किंतु अपनी हठ पर अड़ी रही और अंत में न चाहते हुए भी मन ही मन सोचा जे प्राण जाई बरु वचन जाए, रघुकुल रीत सदा यही चली आई प्राण जाई बरु वचन। यदि राम हमारे वचन को न मान करके अवज्ञा करके वन में न जाए और रह जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राम ऐसा करे, वन में न जाए, हमारी इच्छा का उल्लंघन कर दे। अपने मुख से मैं नहीं कहूंगा, केवल कैकेयी कहे। ऐसा हुआ भी, कैकेयी ने वर मांगा, रामचंद्र जी को पता लगा वो सीता और लक्ष्मण जी के सहित वनवास जाने के लिए तैयार हुए और गए, महाराज को प्रणाम किया। महाराज नहीं भी बोले, हां भी नहीं बोले, बस इसी के लिए खोज रहे थे कि राम न जाए, हमारी अवज्ञा कर दे, हमारा वृद्धाचरण करके न जाए, किंतु उन्होंने वृद्धाचरण किया नहीं। वन को गए, सीता जी भी गई और सब चीजें आप लोग जानते हैं। उस समय में भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, ये लोग श्रृंगेरपुर में पहुंचे, सारी प्रजाएं गई वहां पर, सारा अयोध्या गया और आधी रात में सबको सोते हुए छोड़कर केवट के नैया से उस पार में पार करके चित्रकूट पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई और उसी में दोनों तीनों वहीं पर रह करके अपना जो कार्य है वो सब कर, ऋषि महर्षि बड़े सादर उनको अभिनंदन किया, और जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटे, जब सुना तो सबसे पहले अपनी मैया का संबंध कट ऑफ कर, आज से तू हमारी मैया नहीं, मैं तुम्हारा आज प्राण ले लेता यदि राम हमारे ऊपर में प्रसन्न नहीं होते। कुबड़ी को तो शत्रुघ्न जी ने जानी से मार डालने की चेष्टा की, किंतु राम भरत जी ने छुड़वा दिया। और इसके बाद में वशिष्ठ जी को पुरवासियों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, नगरवासियों को लेकर के भरत चतुरंगणी सेना के साथ राम को मनाने के लिए चले। सभी लोग जब साथ में जाने लगे तो कई कोई को अनुताप हुआ। कैकेयी जी कौशल्या के पास में गई, मेरी बड़ी बहन मैंने बहुत खराब कहा, मुझे अनुताप हो रहा है, तू भरत को कह दे जो हम भी उनके साथ में चलेंगे राम को मना लें, हमने जो उनसे वर मांगा था अब वर लौटा लेंगे। कैकेयी जी ने, कौशल्या जी ने कहा जी मेरी प्यारी छोटी बहन तुमको जरूर साथ ले, और उनको भी साथ ले लिया, भरत जी से उनके नहीं चाहने पर भी स्वीकृति ले ली और चले चित्रकूट पहुंचे। इतना विराट सैन्य देख करके लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध हुआ और भरत को से युद्ध करके उनको परास्त करके करने के लिए और संकल्प किया। राम ने उनको समझाया, भैया गलत मत समझो, भरत जी भक्ति की सीमा है, उसको समझ करके करो, नहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। भरत के भाव देखे लक्ष्मण जी और शांत हो गए, था नहीं लगा सके जो भरत को कितनी भक्ति है। रात में महाराज जनक भी वहां पर उपस्थित हुए और सब लोगों ने वशिष्ठ जी के साथ में ये निर्णय किया कि कल एक बड़ी विराट सभा बैठे, उस सभा में महाराज जनक को सभापति बनाया जाए, और एक तरफ में ऋषि महर्षि बैठे, एक तरफ में अयोध्या पुरवासी बसे, एक तरफ में माताएं बैठे, और ये निर्णय हो कि रामचंद्र जी को लौटना है, भरत जी का ये अनुरोध स्वीकार करना है, या अयोध्या को छोड़कर के राम को अपने पिताजी का आदेश पालन करना श्रेयस्कर है, दोनों में से ये निर्णय किया जाए, और उसमें ये रखा जाए कि भरत और राम उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे। यह कह करके कल के लिए सभा का निश्चित किया गया। दूसरे उस दिन रात को भरत जी पहले मैया के पास, उनके तीन थे गुरुजन, एक तो कौशल्या, दूसरे महाराज महर्षि वशिष्ठ और तीसरे महाराज जनक, उनके पिता ससुर तो पिता होते ही हैं। इस तरह से तीन गुरुजन थे, इनकी बात सभी मानने के लिए बाध्य हैं, इसलिए भरत जी सबसे पहले पास कौशल्या मैया के पास गए। मैया मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं, तू हमारी एक बात अभिलाषा रखो। नहीं जी बेटा क्या कहो, मैं तो राम से भी अधिक तुमको प्यार करती हूं, तुम जो चाहोगे जरूर तो देगी, तो जरूर तो निश्चित देगी। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप राम को कह दें कि राम वनवास में न जाए, अयोध्या को लौट जाए। तो वो चिंता करके बोली बेटा ये तो मैं नहीं कर सकती, क्या मैंने गलती किया, क्या मैं अन्याय कह रहा हूं। बेटा तू अन्याय नहीं कर रहा, तुम तो बात तो ठीक कह रहा है, शास्त्र इत्यादि सभी ऐसे कहते हैं निस्वार्थ होना चाहिए, तुम निस्वार्थ होकर के तुम ऐसा कर रहा है, राम के भलाई के लिए ही कर रहा है, प्रजाओं की भलाई के लिए ठीक कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं कहेगी। इसलिए कि राम भी धर्म का मर्यादा का हिमालय है, वो धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता, तो क्या मैं अधर्म कह रहा हूं, नहीं तुम भी धर्म की बात कर रहे हो, वो भी इसके बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता, बहुत कहने पर भी उन्होंने नहीं माना। तब वशिष्ठ जी के यहां गए, वशिष्ठ जी ने कहा यह मेरे लिए संभव नहीं है कहना, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? मैं दुविधा में हूं, मैं ये ठीक ही नहीं कर पा रहा कि तुम ठीक हो या भरती ठीक है, राम ठीक है, कौन ठीक है। मैं सोचता हूं जब तुम्हारी तरफ मैं देखता हूं तो समझता हूं कि जैसे तुम ही ठीक कर रहे हो, राम को नहीं वनवास नहीं जाकर के राज्य लेना चाहिए, और जब उसकी ओर देखता हूं तो समझता हूं कि राम की बात ठीक है, उसको वन में ही जाना चाहिए, पिता का आदेश मान पालन करना। इसलिए मेरी बुद्धि इस समय में गड़बड़ है, मैं ठीक निर्णय नहीं ले पा रहा। तो वो सुनैना जी के पास में गए। सुनैना जी कौन है? सीता जी की मैया है, उसके पास में। आप एक मुझे वस्तु देंगी? बजे क्या बेटा, क्या चाहिए? अरे सीता जी बन बन में डोल रही, कितना दुख है, और तुम्हारे जवाई भी कितने दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार महाराज जनक से कह दो ये हमारी बात स्वीकार करके राम से और जो यहां लौट जाने के लिए आदेश दे दे, आराम मानने के लिए बात दे। बड़ी असमंजस में पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी बात पहुंचा दूंगी किंतु अपने तरफ से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो क्यों नहीं कहोगे? तो इसलिए कि ये ब्रह्मवादी ऋषि हैं, निष्पक्ष हैं, इनकी निष्पक्षता को कोई उलाट नहीं सकता, समदर्शी हैं, ये जो कुछ भी होगा ये विचार करके कहेंगे, ये ऐसे किसी की भी बात नहीं मान सकते, बड़े अनुभवी हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए जो अच्छा समझेंगे वही निर्णय। भरत की बात बनी नहीं, किंतु भरोसा था कि मेरी बात तो ठीक है, हमारा पक्ष बहुत सबल है, इसलिए राम को ये आदेश ये बात माननी पड़ेगी। बस फिर बस एक कीर्तन करो, फिर सभा बैठी, बड़ी सुंदर सभा बैठी। एक तरफ में महर्षि लोग, बड़े बड़े कैसे महर्षि लोग, वाल्मीकि इत्यादि, हो सकता है कि नारद जी को भी पता लगा, भरद्वाज इत्यादि ऋषि लोग एक तरफ में बैठे, हजारों ऋषि लोग, महाराज जनक जी बीच में बैठे, एक तरफ में भरत, एक तरफ में राम, एक तरफ में सामने माताएं और पूर्जनवासी लोग पीछे बैठे। महाराज जनक ने, वशिष्ठ जी ने, महर्षि वशिष्ठ ने महाराज जनक को कहा हम सभी लोग मिलकर के निर्णय का दायित्व आपको दे रहे हैं, आप निर्णय करके जो निर्णय देंगे राम और भरत मानने के लिए बात होंगे। भरत से पूछा महाराज जनक का निर्णय मान्य होगा? उन्होंने कि अवश्य शिरोधार्य होगा, मान्य नहीं। और रामचंद्र जी से पूछा अवश्य ही उस निर्णय को मैं अपने शिरोधार्य करके मानूंगा। दोनों से पहले यह स्वीकार कर लिया गया और तब उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और आंख बंद करके कुछ सोचा प्रभु के यहां से जो मुझे प्रेरणा आएगी उसी को मैं बतलाऊंगा। होने के बाद में बोले, आंख खोल करके बोलो, देखो मैंने विचार करके देखा, देखा ये धर्म की मर्यादा पालन करने में रामचंद्र जी हिमालय पर्वत जैसे हैं, अटल, अढ़ल और अचल है, और भरत जी का प्रेम इतना अधिक है, प्रेम मर्यादा नहीं जानता, मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है, प्रेम मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, प्रेम की भी एक मर्यादा है, उल्लंघन तो कर देगा, और हिमालय जैसे सात हिमालयों को अपने अतल तल में ये डुबा देगा कौन? प्रेम, प्रेम का समुद्र। तो इनका हृदय प्रेम का समुद्र है, राम की मर्यादाएं भी उसमें डूब सकती हैं, किंतु बात यह है कि वो टस से मस नहीं होगा, उसमें डूब जाएगा मर्यादा प्रेम, किंतु टस से मस नहीं होगा, अपने बात से विचलित नहीं होगा। बात ठीक है, प्रेम में मर्यादा नहीं होती, किंतु प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है। वो क्या होती है? प्रेम की मर्यादा ये होती है कि जो प्रेम करता है अपने इष्ट देव के प्रति, ये देखे कि उसकी प्रीति कैसे होगी, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। हम अपनी इच्छा से उसको प्रसन्न होने के लिए लाख चेष्टा करते हैं, लाख चेष्टा हम करेंगे, किंतु यदि ये ना समझें कि उसमें उस हमारे इष्ट देव को हृदय में क्या बात है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे प्रसन्न होगा, ये ना समझ करके अपनी चेष्टा से, अपने तन मन वचन की और भावनाओं की चेष्टा से उसकी सेवा करने की चेष्टा करेंगे, होगी सेवा किंतु उत्तम नहीं होगी। भक्ति के यही डिफिनेशन है, क्या अन्याभिलाषिता शून्य। अपने लिए कोई इच्छा मत करो, तुम्हारे अंदर में कोई इच्छा है, तुम किस लिए राम को यहां लाना चाहते हो ये बतलाओ तो, राम के प्रीति के लिए, राम की इच्छा के लिए लाना चाहते हो या अपने कुछ है, इस चीज को समझो। तुम्हारी इच्छा से जो सेवा कर रहा है वो सेवा नहीं भी हो सकती है, और हो भी तो पूर्ण नहीं। तुम ये समझो कि राम क्या चाहते हैं, तुम्हारे इष्ट देव हैं या तो, हाँ तो कभी पूछा, कभी सोचा कि राम कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी क्या अंतरभिलाषा है, तो ये तो नहीं मैंने पूछा, तो नहीं है तो देखो, देखो राम क्या चाहते हैं और उसको पूर्ण करो, इसमें राम प्रसन्न होंगे, ये तुम्हारी सेवा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तात्पर्य क्या, यदि हम अपने मन से सारी चेष्टाएं अपने इष्ट देव को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं दिन रात, अपने सिर भी दे देंगे, जैसे कि किसी ने एकलव्य ने अंगूठा दे दिया किंतु अपने गुरु का अंतर भाव समझ सका, इसलिए वो गुरु भक्त ही नहीं। ऐसे भक्ति में ये देखा जाता है कि कौन किसकी अपने इष्ट देव के प्रति ममता है, और उनके अंतर्भावों को समझ करके वैसे ही कार्य, इच्छा और मन बुद्धि वाक्य के द्वारा चेष्टा कर रहा है, तो वो भक्ति होगी और उत्तमा भक्ति होगी। भरत जी ने समझा, ओ आज तक मैं गलत रास्ते पर था, अपने मन से राम को प्रसन्न करने की चेष्टा करता था, राम की भावनाओं को समझने की हमने कभी चेष्टा नहीं की, मैं समझता था कि राम वन में जाएंगे, कष्ट होगा और लोग कहेंगे ओ भरत कैसा निस्वार्थ त्यागी व्यक्ति है, जो इस आए हुए राज्य को, जिसके लिए आदमी क्या नहीं करता, और उसको एक क्षण भी नहीं लगा उस राज्य को छोड़ दिया, इसलिए लोग हमें बड़ी प्रशंसा करेंगे और इसे राम भी प्रसन्न हो जाएंगे। कभी राम की भावना को जानने की चेष्टा नहीं की, बस एकदम झुक गए और महाराज जनक के चरणों में गिर पड़े, बोले जी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, मैंने इस प्रेम की परिभाषा जो सुना तो था, समझा नहीं था। ऐसे ही हम लोग प्रेम की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा से समझते हैं, अपने जीवन में कैसे उसे उतारेंगे ये समझने की चेष्टा। ये कहां से आरंभ होगा? पहले वैष्णवों से, गुरु से, जिसके पास हम हरि कथा सुनते हैं, उसके बाद में कहां जो दीक्षा गुरु इत्यादि हैं, उनसे समझो उनकी मन की भावना, कैसे प्रसन्न होंगे, गुरु कैसे प्रसन्न हो सकता है बतलाओ तो, कैसे प्रसन्न होंगे। यदि उनके इष्ट गुरु के इष्ट देव की आप निस्वार्थ रूप में अपने गुरु जी के अनुगत्य में निरंतर दिन रात तैल धारावत विच्छिन्न गति से सेवा करें, गुरु अपने आप प्रसन्न। गुरु नहीं चाहता जे तू हमारा पैर, हमारे और सोई मनाओ, हमारे लिए कुछ कर, क्या चाहते हैं? रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का चरण दबाया, क्या किया? चैतन्य मनोभीष्टम, यदि रसोई बनाने से प्रसन्न हो रसोई बनाओ, यदि झाड़ू देने से प्रसन्न हो, यदि कह दें जैसे देखो ये मेरी प्यारी शिष्या लड़की है इसकी सेवा करो, इसके घर में रसोई बनाओ, क्या करेंगे? यदि गुरु रामानुज जैसे हो तो ऐसे करेंगे, ऐसा उदाहरण है। खान एक कौन क्या नाम था, चारों वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता और बड़े धुरंधर सब विषय में वेदांत सूत्र इत्यादि की व्याख्या करने वाले, उनको कुछ अभिमान था कि मैं बहुत विद्वान हूं, शास्त्र जानता हूं, अपने गुरु की अभिलाषा करूंगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखो भाई अभी गड़बड़ तड़बड़ मत करो, अभी कुछ मत करो, चुपचाप बैठ। तो वो देख रहे थे जी इसको अभिमान है, किंतु वो क्या समझे जी हमारे गुरु जी सभी जानते हैं, वो समझते जो कलयुगी गुरु हैं जैसे आज होते हैं। उन्होंने तो समझाने ये समझ गए, उनकी एक शिष्या थी, उसका घर में उसके धनी घर में विवाह हुआ, और जब ससुराल से आई तो अपने गुरु जी की मुख लग गई थी। उन्होंने कहा जी गुरु जी पिताजी मेरे ससुराल वाले बड़े ताना मारते हैं, बहुत दूर कुआं है वहां से पानी लेने के लिए कहते हैं, रसोई बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, और हमसे ये होता नहीं, मैंने कभी ये सब चीजें सीखी नहीं, मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी वो लोग उलाहना देते हैं हमारे घर को, माता पिता को, गुरु जी को, सबको वो गाली देते हैं, इसलिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा सुनो बेटा इसके साथ में जाओ, इसके घर में जाना, रसोई बनाना, पानी ला देना और सब काम कर देना। एक बरस तक उनको रखा, बुलाया नहीं। एक वर्ष के अंत में कोई बड़ा भारी धुरंधर कोई पंडित आया और वो सब लोगों को शास्त्रार्थ में हरा रहा था, भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वानों को, और वहां आकर के चैलेंज दिया, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, मैं कि कुछ कर रहा था, कुछ बोल रहा था, यहां पर ये भी उपस्थित थे। राजा उसे बड़े प्रसन्न हुए और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये रसोई बनाने वाला मैले कुचैले कपड़े में अब अभिमान रहित हो गया, क्योंकि एक वर्ष तक रामानुज ने ऐसा आदेश दिया, किंतु शिष्य यही कि रामानुज की बात की उपेक्षा नहीं की। शिष्य भी हो तो ऐसा अभिमानी है किंतु अपने गुरु की बात को टाला नहीं, क्या किया तो सही बना, वैसी तरह से बर्तन मांजना, पानी लाना सब। तो उसी में वो पंडित आया और उसने ऐसा किया तो उन्होंने बीच में खड़े होकर के कहा यदि आदेश हो सभा का तो मैं भी दो चार शब्द बोलूं। अब बस उस समय सभी लोगों ने कहा कि बोलिए, अरे ये रसोईया वाला क्या बोलेगा, ये रसोई बनाने वाला नौकर है घर का, ये क्या बोलेगा। जब उठ करके खड़ा हुआ संस्कृत भाषा में नरगल और शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर में उसके सारे वचनों को काट कर तर्कों को उड़ाकर और भगवत भक्ति की स्थापना कर दी, नारायण की भक्ति की स्थापना। देखते ही सब लोग अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, आंखें खुल गई, सब लोग उसके चरण, अरे इतना बड़ा भारी विद्वान रामानुज का शिष्य शायद है और इसके हन क्या कर रहा है, रसोई बना रहा है, बर्तन मांज रहा है, ये सब। अब रामानुज के पास में सब लोग गए और उसे कहा महाराज इतना बड़ा विद्वान और आपका शिष्य, आपने इसको ऐसे लगा रखा। कहा नहीं, उसको बुलाया और कहा जिस तुम्हारी सर्वसिद्धि हो, बस तुमने हमारे आदेश को पालन किया, मान अपमान का भाव छोड़ दिया, ये गुरु ऐसा होना चाहिए और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, ऐसा मानने वाला हो तब तो ठीक है, और नहीं तो कलयुगी गुरु नहीं। जब महाराज जनक कैसे थे, तत्व विद्या में पारदर्शी, जिनके घर में साक्षात लक्ष्मी ये सीता जी के रूप में आई हो और जिनके दामाद कौन है पर ब्रह्म, ऐसे वो व्यक्ति हैं तो वो साधारण नहीं होंगे, तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए गुरु के बिना ये आंख नहीं खोल सकता है। हम समझे कि उत्तमा भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कौन सी भक्ति हो। इसलिए इस प्यास को समझें। भक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट की मनोभिलाषा, उसके आंतरिक भावों को समझकर उसकी प्रीति के लिए और उसके लिए रुचिकर, दोनों रुचिकर कभी नहीं हो तो भी कोई हानि नहीं। कैसी रुचिकर? जैसे कृष्ण को मल्लों से लड़ने में बड़ा आराम लग रहा है, आनंद लग रहा है, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, ताल ठोक करके फिड़ रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद में बराबरी का एक कोई तीर मिला, किंतु यह आनंद देना जो दे रहे हैं ये भक्ति नहीं। क्यों? उसे मार डालना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण के रुचिकर होने पर भी कृष्ण के प्रीति के लिए नहीं हुआ, इसलिए ऐसे कार्य भक्ति नहीं। और जसोदा जी कान उमेट करके लाला का और रो रहे हैं, मैयारी मैयारी मार मत। और ये उसे कहे चोर चोट्टा बंदर बंधु फिर करेगा। और कृष्ण रो रहे हैं, स्तन का पान कराना छोड़ दिया और क्या किया, दूध उतारने के लिए चली गई, उनको उतार के बैठ यहां, पुतना को नहीं छोड़ा सके कृष्ण। और जसोदा मैया ने झट कृष्ण को धक्का दिया और उनको बैठ दिया। 60,000 हाथियों का बल वाली पुतना कुछ न कर सकी, आगे उन्होंने कहा बैठ गया, बस दांत कड़मल करते रहे, बैठ गए। ये जो कृष्ण का रोना है ये भक्ति है कि नहीं? हाँ, उसी को संभालिए, यहां मत संभालिए। मैं चाहता हूं कि काले पर विश्वास मत, अभी टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इस पर विश्वास कीजिए। हम लोगों ने कभी इसका व्यवहार नहीं किया, कर रहे हैं कीजिए, किंतु इस पर भरोसा मत कीजिए। तो क्या कह रहा था? बैठा दिया कृष्ण, रोने लगे। यहां कृष्ण का रोना भी भक्ति है। क्यों? जसोदा मैया कहते हैं कि हमारे दूध से इसका लाल पान नहीं होगा, उनके प्रति स्नेह है। अरे कपड़े के लिए कृष्ण है या कृष्ण के लिए? कृष्ण के लिए, जसोदा के लिए कपड़ा प्यारा है ना कृष्ण, किंतु भक्तों का कृष्ण के वस्तुओं के प्रति कृष्ण से अधिक प्यार होता है, इसको समझने की चेष्टा करें। इसलिए भगवान से भी भक्त लोग बड़े हैं। यदि भक्तों की कोई सेवा करेगा, गुरु भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी सेवा होने से कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादान नगति ध्यान तुमन दश जसस्त्री संगं बंदे गुरु। जिसकी कृपा ही भगवान की कृपा है, और यदि गुरु प्रसन्न ना रहे तो 1,000 भगवान प्रसन्न होकर के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इस चीज को समझो, यदि भगवान के फर्म भक्त यदि गुरु, और गुरु से भक्ति का कोई संबंध नहीं है भगवान का, वो लाख मर जाने पर भी कुछ नहीं करेगा। गुरु गुरु होना चाहिए, शिष्य शिष्य होना चाहिए। और इन चीजों को समझ करके भगवान के प्रति ऐसी ही विशुद्ध भक्ति की जाए। ऐसी भक्ति ऐसे तैसे अरे गरे लोगों से और अली गली में नहीं मिलता, ऐसी भक्ति नहीं मिलती। कहां मिलेगी? जो स्वयं साधन कर, भजन कर, उनके भावों को उपलब्धि कर चुका है, उसके लिए दिन रात हरिनाम संकीर्तन में डूबा रहता है, भगवान की लीलाओं में डूबा रहता है। यहां तक जिसके देखने से ही आनंद हो जाए और कृष्ण कृष्ण मुख से निकल जाए अपने आप, भगवान की सेवा की का ये भाव हृदय में उठने हिलोरा ले लेने लग जाए, ये गुरु का चिन्ह है। ऐसे भाव हों, ऐसे महापुरुषों का शरणागत होकर के भजन करें, तो भक्ति के भावों को आप कुछ दिनों में उपलब्धि कर सकेंगे और भक्ति देवी आपके हृदय में नित्य करने लगेगी। भैया ऐसे समझ, ऐसे तैसे अली गली में भक्ति नहीं मिलती, प्रेम भी बाजार में नहीं दिखता। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, जो 2.5 अक्षर का प्रेम पढ़ा किसके यहां? किसी प्रेमी भक्ति के यहां। कृष्ण ने
उद्धव जी को कहां भेजा पढ़ने के लिए, अपनी पाठशाला में, पहले जहां पर पढ़े थे कहां पाठशाला थी, ब्रज में पाठशाला थी। पाठशाला का अध्यक्ष कौन था, ललिता जी वो प्रधान थी, उनके यहां उनकी पाठशाला में राधा कृष्ण जुगल के प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए वहां गए। सांत्वना देने के लिए नहीं, कृष्ण समझते हैं ये क्या सांत्वना देगा एक ज्ञानी आदमी, ज्ञानी भक्त ये सांत्वना नहीं दे सकते, और गए। सांत्वना के जो शब्द कृष्ण ने कहे थे वो तो कुछ काम किया, और अपने तरफ जो सांत्वना के शब्द बोले उससे उनका विरह और बढ़ गया, जो प्राण धारण करने की चेष्टा भी थी वो भी समाप्त हो गई। क्या वो जीव कोश भी उनका, जीव कोश माने क्या, जीवित रहने का कि जो भावना थी वो भी नष्ट हो गई, कृष्ण अब नहीं ब्रज में आएंगे ये सुनिया, इसलिए उन्होंने स्तव स्तुति गोपियों की थी कि आपने विरह के द्वारा हमारा परम मंगल किया, नहीं तो हम नहीं समझते थे कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या चीज है नहीं समझ, इसलिए प्रेम को समझना ये रूप गोस्वामी जैसे आचार्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं कहा, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये सब हमारे गुरु वर्ग, इनकी भावनाओं को समझने के लिए ऐसे गुरु हों तब इन भावों को समझा जा सकता है। शायद 9 बज गया, इसलिए मैं यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से बैन है, मैं बैन का उल्लंघन करने से, मर्यादा का उल्लंघन करने से मेरे लिए भी गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उनके बैन को, मर्यादा को स्वीकार कर यही पर वक्तव्य समाप्त करता हूं। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी तुम बोलेगा 10 मिनट, तबीयत बहुत खराब है, ढीली है, हाँ तो बोलो छोड़ दो।